أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
ان شاء اللہ تعالی ہم سورۃ الرعد شروع کریں گے. تھوڑا سا آج کی شیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. سکرین پہ آپ لوگ اگر نظر ڈالیں تو ہماری آج کی شیٹ ہے. سب سے پہلے آیت تدبر. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, پھر نالے بھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے, پھر وہ سیلاب خس و خاشاک کو بہا لایا جو اس پانی کے اوپر آ رہا ہے, اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زیور یا اسباب بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی اسی طرح مثال بیان کرتا ہے. سو وہ جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے, اور جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ دنیا میں فائدے کے ساتھ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ضروری مضمون کی مثالیں بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس آیت کو دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ اس پوری صورت رات کے اندر آپ کو مجھے حل چل نظر آئے گی کہ کس طرح اس دنیا میں حق اور باطل ایک ساتھ چلتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ دوسروں کے نفع کا بنا کر انسانیت کے کام کا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اسی سے ملتی بھی آج کی حدیث ہے, اور یہ حدیث ہم تک صحیح مسلم کے ذریعے سے پہنچی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح معدنیات ہیں. یعنی جب سونا اور چاندی پہاڑ کی تہ میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے, بالکل کروڈ ہوتے ہیں, بیکار ہوتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں. جو زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ زمانے اسلام میں بھی اچھے ہیں, بشرطے کے سمجھدار ہوں. تمام روحیں باہم مجتمع تھیں جن کا اس وقت تعارف ہوا, ان میں الفت ہو گئی, اور جو اس وقت اجنبی تھیں وہ مختلف رہیں. حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. اللہ کی یہ کتاب ہمیں کھود کے رکھ دیتی ہے, اور ہم اپنے اندر کی خامیوں کو جس طرح جانتے ہیں اسی طرح قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خوبیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں لوگوں کے نفع کا بنا. پوری صورت رات کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نفع دینا ہے, اور حقیقت ہے کہ کائنات کا اصول بھی یہی ہے کہ جو نفع دے گا وہی بچے گا, اور جو لوگ بھی آج دنیا میں کسی کو فائدہ دے رہے ہیں وہی بچیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو استعمال کر لے, اور اگر ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو ہمیں وہ خوبی عطا فرما. آج کی دعا سورۃ یوسف کی آیت 101 ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ والآخرتی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے, آپ میرے کارساز ہیں, دنیا اور آخرت میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور مجھ کو خاص بندوں میں شامل کریں. اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. देखिएगा गैर महसूस तरीके से दुनिया में भी अच्छी सोहबत मिलती जाएगी और अल्लाह ताला मौत के बाद कब्र भी अच्छी जगह दे और हशर भी हमारा अच्छे लोगों के साथ करे। दूसरी दुआ सूरत इब्राहिम में आयत 40 और 41 में है, जो आप सबको जुबानी याद होगी, बहुत पढ़ी जाने वाली दुआ है, अब मांगने की जरूरत है। क्या? रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना अग़फिरली व लि वालिदय्य व लिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझको भी नमाज का खास एहतमाम रखने वाला रखिए और मेरी औलाद में भी बाज़ों को। ऐ हमारे रब, हमारी ये दुआ कबूल कीजिए। ऐ हमारे रब, मेरी मग़फ़रत कर दीजिए और मेरे माँ बाप की भी और कुल मोमिनीन की भी हिसाब कायम होने के दिन। शऊर से पढ़िए दोनों दुआएं, पहली दुआ सब मिलके पढ़ें। अगली दुआ सब शोर से पढ़े, भी सब नहीं बोले। नेक्स्ट पढ़िए। आमीन सुम आमीन। इन दुआओं को शोर से मांगने की जरूरत है इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आज की टाइम टिप, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? इन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आपसे फायदा हो रहा है। कुछ की लिस्ट तो सिर्फ दो बच्चे, एक शौहर और चंद घर वाले होंगे, और कुछ की इससे बहुत ज्यादा होगी। इंशाल्लाह भी हम इस सूरत में इस पे बात करेंगे। किसको मुश्किल लग रहा है ये बनाना? उसके बाद टाइम वेस्टर, आज का टाइम वेस्टर जिस पे हमने गौर करना है, वो क्या है? ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि कुछ करके दिखाइए। हमारा बहुत सारा वर्क सिर्फ इस सोच में गुजर जाता है, मैं कर नहीं सकती, मुझे करना नहीं आता, मेरे हालात ठीक नहीं है, अभी मुमकिन नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं। इतनी सी देर में अगर कुछ कर लिया हो तो बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। आप देखिए, आप इसी हॉल में आए, शोर है, खूब हंगाम है, आवाज कान में नहीं पड़ती थी, आप क्या सोचेंगे? कुछ नहीं हो रहा, शादी है, फंक्शन है, दावत है, किलो काल है। इसके बरक्स आप किसी भी हॉल में आए, पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोश, और सब सर झुकाए कुछ लिख रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? कमरा इम्तिहान है और हर एक कुछ कर रहा है। या आप अंदर आए, सब कंप्यूटर पे बैठे खामोशी से कुछ कर रहे हैं, क्या लगेगा? काम हो रहा है। तो लिखिए, बड़ी अहम बात है, जहां काम हो रहा होता है ना, वहां खामोशी होती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जहां काम नहीं हो रहा होता ना, वहां सिर्फ आवाजें ही बुलंद हो रही होती हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी सिर्फ शोरों हंगामा करने और मचाने में और रिएक्शन और एहतजाज के नाम पर गुजरती है। अगर आप और मैं काम में लग गए ना, कोई मसला भी नहीं होना, कोई फिक्र भी नहीं होना। तो जिंदगी में ये कीजिए कि कुछ करें, बजाय इसके कि यही हर वक्त एहसास दिलाते रहें खुद को और दूसरों को कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी को जाया होने से बचाए। और आज की रोल मॉडल शख्सियत आपके सामने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार एक वजीर के रूप में, हम बड़े खूबसूरत तरीके से इसको देख चुके हैं कि कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ तरीके से उस मुल्क के मुश्किल हालात को संभाला, और न सिर्फ ये कि अपने मुल्क को फ़ायदा दिया, बल्कि दूसरों को भी नफ़ा देने वाले बने। और दूसरी चीज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहसियत मुआफ़ करने वाले, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। अल्लाह ताला हमें इन दोनों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं आप सूरत अर्रात पे। रात कहते हैं थंडर स्टॉर्म को, कड़क को, बिजली को, फरिश्ते का भी नाम है, इसका तस्करा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, तिलका आयातुल किताब, ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग नहीं मान रहे। अल्लाह हमें मानने वालों में कर दे। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हों। फिर वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ और इसने आफ्ताबो महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ खोल खोल कर बयान करता है। शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। सोचिए, है यकीन? अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें बना दे। कायनात में अल्लाह ताला ने जो कुछ रखा हुआ है आपके मेरे लिए, अल्लाह ताला हमें इसको देखकर गौर व फिक्र करने वाला बना दे। वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए और दरिया बहा दिए। इसी तरह इसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। कभी गौर किया आपने? फ्रूट चाट बनाते हुए गौर कीजिएगा, आप देखिए कि कायनात में हर उस इंसान के लिए नसीहत की गजा है जिसको सोचने और गौर व फिक्र की आदत पड़ गई। और जब हम बातें कम करते हैं तो गौर ज़्यादा करते हैं। हमारा हाल यह कि खाना पकाते हुए भी बातें कर रहे होते हैं और खाते हुए भी। इसके बाद अब ज़मीन की बात है। इस मंजर को मैं कहाँ महसूस करती हूँ? जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है। आप किसी भी दुनिया के मुल्क में उतरे ना, तो आप देखते हैं जो ही जहाज नीचे आता है ना, तो आपको जमीन ऐसे टुकड़ियों की तरह दिखती है, कहीं डार्क ग्रीन, कहीं लाइट ग्रीन, कहीं दरख्तों की बाउंड्रीज बनी हुई हैं। तो हमेशा गैर मखसूस तरीके से मुझे सूरत अर्रात की आयत याद आती है। आइए देखिएगा, वह फिलर दी कितुम मुतजावीरात, और देखो ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। अंगूरों के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें कुछ अकेले हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। क्या निशानी है इसमें? आप देखिए, यहाँ ज़मीन की बात की है ना, और पानी एक है, फीका पानी है। मीठे आम भी उसी ज़मीन से निकलते हैं और कड़वे करेले भी निकलते हैं। याद रखिए कि जिस तरह ज़मीन है ना, इसी तरह दिल भी दो तरह के होते हैं। एक ही इल्म का पानी दो दिलों को मिलता है, एक में से मीठे मीठे अमल निकलते हैं और एक में से कड़वा कड़वा अखलाक निकलता है। और ये भी याद रखिएगा कि बीज अच्छा हो तो फल अच्छा होता है। आपके मेरे लिए इस वक्त गौर व फिक्र का एक नुक्ता है, मेरा दिल कैसी ज़मीन है। ये कुरान एक ही चल रहा है, मैं एक ही तरह का बोल रही हूँ, सब सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मीठे मीठे अमल करके और अपने अखलाक में मिठास पैदा करके और अपनी इसलाह करके आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं वो उलझते ही रहते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल की मट्टी को नरम कर दे, और अगर ज़रखेज़ नहीं है तो कर दे। मैं तो अल्लाह से यही कहती, अल्लाह मेरे में जो खूबी नहीं डाल दे, मेरी जो खराबी है निकाल दे। मुझसे नहीं रुका जा रहा तो मुझे रोक, मुझसे ये नेकी नहीं की जा रही तो कर। लाड कीजिए, अल्लाह मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ आप करें, हाँ मैं तैयार हूँ। आप देखेंगे कि गैर मखसूस किस्म की चेंज आप अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी तबीयत में पाएंगे। बचपन से आज तक आपकी एक पर्सनैलिटी थी, कुरान आपको बिल्कुल एक नया इंसान बना देगा। शर्त यह है कि अल्लाह से मांगना आ जाए। वहीं ताजब, अब आगे मक्का वालों की कुछ बातें, इस पूरी सूरत में आपको इसी तरह की बातें दिखेंगी कि इतराज बहुत करते थे, कब आनी है क़यामत, क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, आज तक तो फिर हुआ नहीं, आगे जाके कैसा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये कौन सा तौक था? तकब्बुर और खुदपसंदी का। अबू बकर भी उसी शहर में रहते थे जहां अबू जहल रहते थे, वही शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अबू बकर को भी दिखता था, वही अबू जहल को भी दिखता था। पर क्या वजह हुई कि अबू बकर हर चीज पे आमन्ना व सद्दकना कहते हुए दिखते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दिखते हैं, लेकिन अब अबू जहल की गर्दन अकड़ी ही रही कि मौत के वक्त भी उसने यही वसीयत की थी कि जब मेरी गर्दन काटोगे तो यहां से काटना, यहां से ना काटना। क्यों? कि जब मेरी खोपड़ी गिरी हो तो मेरी गर्दन साथ हो, ताकि लोग कहें ये किसी सरदार की गर्दन है। क्या वजह थी? तकब्बुर। ये तकब्बुर का तौक होता है, करीब पड़ी चीज ना नजर आई और दूर दूर की कौड़ियां रखते रहे। अल्लाह ताला हमारे अंदर से ये खुदपसंदी खत्म कर दे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हलक इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले, इन पर अल्लाह के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है। तो मुझे आपको क्या करना है, दूसरों की खताओं पे दरगुजर कीजिए, क्योंकि अल्लाह भी तो यही काम करता है। और ये भी हकीकत है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है, जो उस दौर का नबी था। अल्लाह हमें आज के रहनुमा मिला दे। अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत देने वाला रखा होता है। पहले नबी होते थे, आज दाईये दीन है, मुबल्लिगे दीन है, दीन को पहुंचाने वाला प्रीचर। असल बात यह है कि हम उसे रहनुमाई लेने वाले बन जाएं। आज इस उम्मत को कितनी जरूरत है रहनुमा की और रहनुमाई की। अल्लाह हमारे रहनुमाओं को रहनुमाई देने वाला बना दे। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी बेशी होती है इससे भी बाखबर रहता है। पेट के अंदर बच्चा पैदा होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दर्दे जह की तरफ इशारा इन आयतों में। माँ को नहीं पता कब बच्चा पैदा होगा, अल्लाह को पता है। बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है कि नहीं, बाज़ दफ़ा कई महीने पेट में रखने के बाद पता चलता है कि बच्चा तो ठीक ही नहीं है। अल्लाह कहता है मुझे सब पता है। जब उसको ये सब पता है, तो फिर आप बताइए क्या मेरे आपके दिल की बातें नहीं पता होंगी। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मुकर्रर मकदार है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला बरतर रहने वाला। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, सब उसके लिए यकसां है। फिर वही बात के हम सब अल्लाह की नजरों में हैं। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल करते हैं। कौन होते हैं ये फरिश्ते? हदीस में आता है कि एक इंसान की हिफाजत के लिए 10 फरिश्ते होते हैं। इसी तरह से इंसान की हिफाजत के लिए जो दो मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते हैं ना, एक उसकी जिस्मानी हिफाजत करते हैं। हदीस में आता है आंखों के पास, नाक के नथनों के पास, कान के पास, जुबान के पास, आगे पीछे दो दो फरिश्ते रखे हुए हैं। वरना आप देखें कि जितनी एनके टूटी होती हैं, इतनी आंखें भी फूटी होती हैं। कभी आपने देखा बच्चा गिरता है, इधर चोट लगती है, इधर क्यों नहीं लगी? फरिश्ते ने रोक लिया। अल्लाह ने फरिश्तों से आपकी मेरी हिफाजत कराई, आप और मैं क्या अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे? दूसरी किस्म के फरिश्ते हैं आमाल की हिफाजत के लिए। इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातबीन। चंद सेकंड के लिए गौर करते हैं, अपने किरामन कातबीन को महसूस करें, और अगर इसको एक्टिविटी बना लेना, 24 घंटे ऑब्जर्व करें, इधर ही कोई बैठा है, एक दाएं पे एक बाएं पे, और मेरे हर अमल को वो नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की हिफाजत करने वाला बना दे। उसके बाद बड़ी प्यारी बात है, और वो क्या, इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकुम मिन हत्ता युगैरु मा बि अनफुसिहिम। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती। पहले तो यहां खुद को समझें कौम की जगह पे। तो जब तक मैंने अपनी आदतें नहीं बदलनी, मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। सीधी सी बात है, कुछ आदत ऐसी होती हैं जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट होती हैं। अल्लाह कहते हैं तुम नहीं बदलोगे, मैं तुम्हारे हाल को नहीं बदलूंगा। बरक्स इसके अगर आप उम्मत का हाल देखें, तो ये वही बात है जिसको मौलाना हाली की गालिबन पोएम है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले, तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। दुआ करें अल्लाह टाल दे अब मुसलमानों की शामत को। फिर दुआएं मांगें, काबा में जाके रोएं, इमाम काबा दुआएं मांगें, जो मर्जी कर लीजिए, वो नहीं टलेगा। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। क्यों? इस एक आयत में उम्मत मुस्लिमा को गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। आप देखिए कि नबी सल्लम से लेकर 1000 साल तक मुसलमान इस दुनिया पे सूरज बनकर चमके, और सूरज भी जब निकलता था तो एक हिस्से से निकलकर दूसरे में डूबता था, और दोनों मुसलमानों के इलाके में थे। और गालिबन हारून रशीद या मामून रशीद कहा करते थे बादल को देख के, जा जिधर मर्जी जाके बरस, तेरा खराज तो मुझे ही मिलना है। यानी हेयर और देयर, यूरोप से लेकर सारा एशिया तक, और इर्द गिर्द देखिए ये मुसलमानों के कब्जे में था, बिल्कुल फ्रांस के बॉर्डर तक मुसलमान पहुंचे हुए थे। स्पेन कितना दूर है यहाँ से। फिर क्या हुआ? फिर हम बदल गए, फिर हमारी हालत बदल गई। अल्लाह सुबहान तआला ने हमें फिर उसकी सजा दी। मौलाना हाली कहते हैं, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। आज इस्लाम अजनबी गरीब, आज इस इस्लाम को हमने एक यतीम बच्चे की तरह कहाँ रखा? और सारा इल्ज़ाम लगाते हैं तो चंद मगरबी ममालिक के नाम पे लगाते हैं, उनकी साजिशें, उनकी कोशिशें। कभी तो अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो। आप देखिए कि अगर आप तकाबुल करें ना, तो एक तरफ तरक्की याफ्ता ममालिक को लिखिए और दूसरी तरफ अपने हालात को देखिए। जो मुल्क आज दुनिया में तरक्की करे उनमें क्या है? लोग मेहनत करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, मेहनत की अजमत होती है, वक्त की कदर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इल्म दोस्त होते हैं, इंसान की कदर करते हैं, एक मकसद के लिए जीते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिशों में होते हैं। उनके हदफ बड़े होते हैं, वो सोशल वर्क करते हैं, वो दूसरों के आराम की फिक्र करते हैं, वो रात को गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाते, वो रिसर्च करते हैं, वो डंडी नहीं मारते, वो झूठ नहीं बोलते, वो इजादात करते हैं, वो डिस्कवरीज करते हैं, उन मुल्कों में हॉस्पिटल्स बनते हैं। इसके बरअक्स आज के मुसलमानों पर भी तो गौर कीजिए। मेहनत की आदत है, वक्त की पाबंदी है। वक्त पे शादी में जाने वाला बेवकूफ है, क्योंकि उसने प्लस 2 आवर्स नहीं किए और जाकर सारी कुर्सियां लगता और उन पे कपड़ा लगता देखता है। हमें क्या हो गया? इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जितना एक एक शादी पर हम खर्च करते, एक एक दुल्हन के मेकअप, उसके जोड़े पे खर्च करते, अगर इतना रिसर्च पे खर्च किया होता तो आज हमारे अपने मुल्कों में कितना कुछ बन रहा होता जिसको बेचकर हम दुनिया में उरूज पा लेते। आज हमारी गुफ्तगू के मौजूद क्या हैं? सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं को बेवकूफ़ साबित करना और उनको खोटा और अंदर से मुनाफिक साबित करना हमारा मौजू बन गया। क्या खाया था, क्या पहना था, क्या किया था, कैसी लग रही थी फुलां, क्या कोई एक भी चीज़ है जो हमारी वेस्ट के लोगों से भी मिलती है? फिर हम कहते हैं कि रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। तो ये आयत मुझे आपको दावत देती है अपने आप को बदलने की, अपने हालात को बदलने की। आप देखिए कि वो लोग जिन्होंने अपने कल्चर और अपनी तहजीबों को ज़िंदा किया और अपनी ज़ुबानों को ज़िंदा किया, उन्होंने मेहनतें कर दी। 22 साल लगाए थे अमेरिका में, किसी एक शख्स के बारे में आता है कि साउथ अमेरिका में उनकी सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है, उन्होंने अपने उस कल्चर को, उस तहजीब को जिंदा करने के लिए 22 साल लगाए, कई जुबानें सीखी, दुनिया में उन सारी चीज़ों को जाकर पेश किया। आज हमारा क्या हाल है? वो 22 साल सिर्फ एक मुर्दा तहजीब पे लगा सकते हैं, हम 22 महीने इस जिंदा किताब को सीखने सिखाने पे नहीं लगा सकते। ये है आज की उम्मत का खराबी। हम छोटी छोटी बातों पर जाते हैं। आप देखिए, बिगड़ी हुई कौमें बन गई और बने हुए कौम बिगड़ गए। मैं नाम नहीं लेती, एक इलाका जो हमारे करीब है, डाकू मशहूर थे वहाँ के, आज पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने एथिक्स ठीक किए, उन्होंने अपनी आदत बदली। जिन्होंने पूरी दुनिया में बॉम्ब गिराकर दुनिया को तबाह किया था, आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर अपना नाम मनवा चुके हैं। हमें सोने की आदत पड़ गई। और सबसे बड़ा जो आज का हमारा गम है ना, वो पता क्या है? कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज हमें यह भी नहीं पता कि हम शक में हैं। हिस्पानिया को देखिए, बगदाद को देखिए, कहाँ हम मौजूद थे। लेकिन वही बात है, वही लिक द बूट दैट किक्स अस। हम उन्हीं जूतियों को चाटते हैं जो हमें ठुड्डे मारती हैं, और हम उनकी अच्छी बातें नहीं मानते। आज वो जिनके झूठे नगीने वो मान कर रहे हैं, और सुच्चे डायमंड हीरो जैसा दीन छोड़कर आज हम दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। याद रखिए, इसकी वजह बहुत बड़ी, माँ को बंजर करना। माँ की गोद बंजर हो गई, नस्लें वीरान हो गई। वो इल्म दोस्ती का दौर था, माएँ बच्चों को दूध पिलाती थी, साथ किस्से सुनाती थी सहाबा के सहाबियत के। आज माँ के हाथ से किताब चली गई, घर में किताब आई भी बहुत, तो फैशन मैगजीन और चंद नाम के जिसमें दुनिया ही की कुछ चीज़ें हैं। बच्चों ने माँ को कब किताब पढ़ते देखा? कहते तालीम उम्मी तालीम उम्मती। एक माँ को तालीम देना, एक उम्मत को तालीम देने के موافق ہے. تو اس ساری محرومی اور ان ساری چیزوں سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو آج آپ نے سفر شروع کیا ہے نا اس قرآن کو تھامنے کا, اصل میں یہ امت کے عروج کی طرف پہلا قدم ہے. تھوڑا سیکھ کر بعد میں آگے اور سیکھیں گے, آگے سکھائیں گے, پوری امت کا حال بدلتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلاصہ ہے اس بات کا, حدیث کو اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ عروج کی ترکیب, یعنی چار کام ہے قوموں کو عروج دلانے والے. نمبر ایک, امانت کی حفاظت, بات میں سچائی, حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیز. ذرا ان چار باتوں پہ آج کی امت کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. عروج کو چھوڑ کر زوال پہ چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے. اللہ سے ڈرنا ہر حال میں, عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے اور رضامندی میں, میانہ روی اختیار کرنا امیری اور فقر میں, اہل قرابت سے رشتہ داری جوڑو, جو توڑے ان سے ملو, اور جو تمہیں محروم کریں تم ان کو عطا کرو. ایسے پیارے ایتھک سکھا کر جو نبی گیا, آج اس امت کو دیکھیے. دعا کیجئے کہ اللہ ہماری حالت بدل دے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں, لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات کیسے, آپ کہیے کہ حالات کا تو ہمیں نہیں پتا, حالت بڑی خراب ہے. اللہ ہماری حالتوں کو سوار دے. اور اللہ نے اس امت کو ایک عجیب شان دی تھی, دنیا والے دنیا میں مستیاں کریں پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے, امت مسلمہ کی تو ترکیب ہی بڑی فرق ہے. کہ تو کیا سقوہ میں مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج مجھے آپ کو اس بات کا احساس دلا دے کہ ہمارے اس بات کو سمجھنے سے تو اس امت کے حالات کو بدل دے گا.